તારીખ 26/4/1988 શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 637 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 641 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
लक्षणरूप जो आत्मा है उसका निर्णय हो ही नहीं सकता. ये बात तो इसलिए 638 में प्रतिपादन की है कि इसके पहले भी प्रश्न उठाया गया है कि लक्षण की क्या आवश्यकता है, हमें सीधा ही आत्मा बता दो, आत्मा कैसा है वो सीधा ही बता दो, जैसा हो वैसे बात बता दो हमको. बीच में ये लक्षण वाली बात को रखने का क्या कारण है, क्या प्रयोजन है, उसका ये उत्तर दिया है कि बिना लक्षण लक्ष्य रूप आत्मा का निश्चय नहीं सकता है. ऐसा ही इस विषय में अनिवार्य वस्तु स्थिति है, परिस्थिति है, जिसको हम हटा नहीं सकते. आत्मा एक ऐसी अरूपी चीज है, ऐसा एक अरूपी पदार्थ है कि जिसके विषय में इस हम मैंने ये परिभ्रमण करने वाला जीव अनादि से अनभिज्ञ रहा, पहचाना नहीं, जाना नहीं, और इसके विषय में बहुत सी बातें विभिन्न रूप से विश्व में चली है, चलाई जाती है, और लोग असमंजस में पड़ते हैं कि आखिर में सही बात कौन सी होगी, किसकी होगी, ये भी सवाल रहता है. तो यहाँ नील लक्षण बुद्ध ऐसा एक ज्ञान का उपयोग है, इससे ही इसकी सिद्धि की जाती है, इसकी पहचान की जाती है. मैंने बात बहुत ठोस रखी है इस विषय में. अब ये बात चलती है, अपने चलते विषय में यहाँ तक आए हैं कि ऐसा जो निर्णय विचार की भूमिका में होता है, तो विचार की भूमिका में सभी निर्णय राग की प्रधानता में जीव कर रहा है, यह परिस्थिति राग रहित आत्मा की पहचान करने में अनुकूल नहीं है। ज्ञान निश्चय होता है, पहचान होती है, दूसरी परिस्थिति में होती है, और इसलिए ज्ञान लक्षण है आत्मा की पहचान होती है। ये बताने का प्रयोजन भी यही है कि ज्ञान की प्रधानता में, ज्ञान की मुख्यता में ज्ञान को पकड़ करके स्वभाव को पहचाना जाता है। अब कहते हैं 638 में इस विषय पर कि जिस प्रकार से आत्मा पर से भिन्न और स्वयं से परिपूर्ण यह काम हो गया, पर मैंने नास्ति बात है, पर से भिन्न और स्वयं से परिपूर्ण जिस प्रकार से समझने में आवे उस प्रकार से जिसको इसका निर्णय होता है, जिसको आत्मा का निर्णय होता है, उसको ये आत्मा की पहचान हो जाती है। ये विषय चल रहा है कि यहां पर ये दृष्टांत चलता था कि जिस प्रकार और इस प्रकार वो बात क्या है, फिर से क्या कहते हैं गुरुदेव के शब्द में कि आत्मा पर से भिन्न और स्वयं से परिपूर्ण जिस प्रकार से समझाए उसी प्रकार से उसका निर्णय करोगे उसको आत्मा लक्षित होता है, पहचाना जाता है। तो जिस प्रकार उस प्रकार वो प्रकार क्या है ये बात अगर समझ में आई तो हम इसके अनुसार हमारी कार्य पद्धति बना सकते हैं। तो ये बात चल रही थी कल आखिर के समय के जैसे हमें हर्षोप होता है, ये दृष्टांत इसलिए देते हैं कि हर्ष और शोक के साथ में परिणाम में रस तीव्र होता है। सामान्य कार्यों में रस इतना तीव्र नहीं होता है। जैसे कि हम बैठते बैठते हमारे पैर थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं तो इसमें ज्यादा रस नहीं है तो पता ही हमको नहीं चलता है। किसी ने बोला कि क्यों ऐसे बार बार करते हो, कि हमको तो पता ही नहीं है कब किया हमने, ध्यान ही नहीं जाता। सामान्य जो साधारण कार्य है उस कार्य में इतना रस नहीं पड़ता तो ध्यान नहीं जाता। जिसको वेद ज्ञान की शुरुआत करनी है और भिन्न ज्ञान को भिन्न ज्ञान जिस प्रकार समझाए, आत्मा जिससे भिन्न समझाए, रागा जिससे भिन्न समझने में आवे, उसकी शुरुआत करने में तीव्र रस के काल में उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि ये स्थूल परिणाम होते हैं। तो जब जब किसी भी कार्यवश ये तो दृष्टांत दिया था खाने का पीने का, लेकिन किसी भी प्रकार का उल्लेख हो, जब जब परिणाम में रस के जो हो गए उस वक्त हमें ये देखना है, उनको ये तलाश करनी है, अवलोकन करना है कि हमको हमारे आत्मा में कुछ आता है या कुछ जाता है, क्यों ये रस होता है। अकेले ज्ञान को अवलोकन में लेने से ये साफ साफ दिखाई देता है कि ज्ञान में कुछ आया नहीं, ज्ञान में कुछ गया नहीं। स्वतः प्रकाशक शक्ति होने से और ज्ञान में इस प्रकार की स्वच्छता होने से अनेक प्रकार के ज्ञेयों का प्रतिबिंब उठता है, फिर भी ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञान अविकार रूप से ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञान विकृत होकर के रागादि रूप और अग्नि रूप नहीं हो जाता। उसी प्रकार जितना अभ्यास चलता है अवलोकन का, उसमें मैं सभी राग और गेयों से भिन्न हूं, वो बात समझ में आती है। एक तो ये बात समझ में आती है कि मैं भिन्न हूं, तो भिन्न हूं इसलिए मुझे किसी की अपेक्षा भी नहीं, मैं निरपेक्ष हूं, ये भी बात समझ में आती है। किस तरह समझ में आती है कि ज्ञान को मुख्य करके ज्ञान लक्षण की प्रधानता में ये बात अवलोकन से समझ में आती है, अवलोकन मैंने अनुभव से समझ में आती है। अवलोकन क्या चीज है कि ज्ञान में ज्ञान का अनुभव को देखना, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव को देखना कि इसमें राग का प्रवेश हुआ, इसमें रजकण की किसी भी पर्याय का प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर रस क्यों आया? कोई इष्ट बने का रस आता है कि ठीक है ये चीज मुझे अच्छी लगती है, तो अनिष्ट बने का रस आता है कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है। मीठी चीज अच्छी लगती है, कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती है, तो ये क्यों क्यों हुआ कि इस वक्त साफ दिखाई देता है कि ये कल्पना हुई है, वास्तव में ये चीज इतनी भिन्न है कि इससे मेरा कोई संबंध होता ही नहीं, किसी भी पर पदार्थ से मेरा ज्ञान का स्पर्श भी नहीं होता, कुछ संबंध नहीं होता, सिर्फ इसका एक प्रतिबिंब आता है, फिर भी मैं तो ज्ञान मात्र ही हूं, मात्र ज्ञान रूप ही रहता हूं, ऐसा मुझे मेरा अवलोकन से अवभाषित होता है, स्पष्टतया ये भाषित होता है कि मेरे में कुछ नहीं। ऐसी जो भिन्नता है, ये भिन्नता अवलोकन से समझ में आवे, तर्क से, न्याय से, आगम से, अनुमान से, ये जो चार प्रकार के परिणाम हैं, ऐसे अनुमान प्रमाण के पांच प्रकार हैं, या प्रमाण के पांच प्रकार हैं, इसमें आगम है, न्याय है, युक्ति है, तर्क है और अनुभव है। सबसे बलवान है वो अनुभव प्रमाण है, पांचों प्रमाणों में आगम प्रमाण से भी अनुभव प्रमाण बलवान है, ताकत है, तो अनुभव प्रमाण से जो आती है, अनुभव से प्रमाण होकर के जो ताकत आती है, वो ताकत आगम पढ़ने से नहीं आती, किताब पढ़ने से या ताकत नहीं आती, इसलिए यही पद्धति आगम से फरमाई गई है। आगम में भी यही बात लिखी गई है कि ये अनुभव प्रमाण है, ये सबसे बलवान प्रमाण है, ये भी आगमिक सिद्धांत है, ये भी आगम का प्रमाण है। तो यहां से इस पद्धति से हमें कार्य करना है कि जिस प्रकार से आत्मा स्वर से भिन्न समझ में आवे, वो प्रकार कौन सा कि हमारे उदय में चलने वाला जो परिणाम है उसमें एक उदय भाव है और एक ज्ञान परिणाम है। उदय भाव ज्ञान परिणाम में प्रतिबिंबित होता है, झलकता है, फिर भी ज्ञान मात्र ज्ञान रूप रहता है, इसमें कोई विकृति उदय भाव लाई नहीं सकता। ये बात हमने ज्ञान को ज्ञान का अनुभव से देखती है कि हमारे में ये क्या होता है, ज्ञान में मैंने मेरे में क्या होता है, इस बात को हमको इस ढंग से देखनी है, इस पद्धति से देखनी है। तो इसमें भिन्नता समझने के साथ साथ ही ये इसे ज्ञान की निरपेक्षता भी समझ में आ जाए कि ये इसे मेरे लिए विकृति तो नहीं होती क्योंकि मैं भिन्न रहता हूं, लेकिन ये के आधार से मेरा ज्ञान प्रवर्तित तो होता है, उत्पाद रूप होता है, तो बात ही नहीं। ये जो निरपेक्ष पना है, ये जब अवलोकन से समझ में आता है तब ज्ञेय की अनादि से चली आई जो आधार बुद्धि है वो छुट जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस विषय का। सारे इस प्रकरण का कोई मूल मुद्दा है तो यहां पर है पहचानने का कि जब मुझे किसी का किसी के आधार की जरूरत नहीं, जब मैं अवलोकन करता हूं मेरे वर्तमान परिणाम को, तो वर्तमान में जब मुझे कोई किसी की अपेक्षा नहीं, मैं निरपेक्ष हूं, सभी ज्ञेयों से निरपेक्ष हूं, मेरा ज्ञान रूप परिणाम सहज ही ज्ञान स्वभाव के कारण उत्पन्न होता रहता है, और इसके उत्पन्न होने में किसी ज्ञेय की अपेक्षा नहीं, ज्ञेय से निरपेक्ष, बिल्कुल निरापत्त निरपेक्ष मेरा कार्य हो रहा है। ये वर्तमान परिस्थिति तीनों काल की परिस्थिति को स्पष्ट कर देता है कि जब मैं वर्तमान में ही निरपेक्ष हूं तो मैं हमेश के लिए निरपेक्ष हूं, ऐसा मेरा परिकालिक सामर्थ्य जो है वो इसे पहचाना जाता है। भिन्नता क्यों आती है? परिणाम में भिन्नता क्यों खड़ी होती है कि अपना निरपेक्ष तत्व है उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसकी प्रतीत नहीं आई। आगम से, न्याय से, विचार से इस बात की हां भरते हैं, लेकिन अवलोकन में प्रत्यक्ष तौर से उसको देखते नहीं तब तक उसकी प्रतीति नहीं आती, विश्वास नहीं आता। हमें उल्टा विश्वास तोड़ना है और उल्टा विश्वास पैदा करना है। उल्टा विश्वास कब आता है? कोई चीज अच्छी बुरी लगती है पर विश्वास के साथ लगती है। ये विश्वास कब टूटता है? कि जब प्रत्यक्ष तौर से वो उल्टी परिस्थिति नजर आती है तब। सुनी सुनाई बात में इतना विश्वास नहीं आता जितना प्रत्यक्ष अनुभव दूसरे बात में विश्वास आता है। ये बात तो सर्वसामान्य सुनी दी है। तो यहां पर भी अवलोकन में ये बात प्रत्यक्ष होती है कि मेरा ज्ञान किसी ज्ञेय की बिना अपेक्षा निरपेक्ष रूप से स्वयं ही हुए ही जा रहा है। इसको कोई रोक सकता नहीं, इसको उत्पन्न करने में किसी की मदद तो नहीं, लेकिन उसको बंद भी कोई नहीं कर सकता। वर्तमान में जो यह परिस्थिति है तो तीनों काल में मेरी यही परिस्थिति है। इस वैकालिक सामर्थ्य का पता चलता है कि मेरे में ज्ञान का अनंत सामर्थ्य है। इस प्रकार से जिस प्रकार मैंने इस प्रकार से अगर प्रतीति के साथ जानना हुआ तो एक नया विश्वास पैदा हुआ, और उल्टे विश्वास में उसी वक्त के जो दरार होते पर चीज की अच्छी अच्छाई बुराई जो भी महसूस होती है ये बात को विश्वास पर पैदा नहीं है, कल्पना उसमें पैदा होती है। और ये कल्पना में मैं फंसता हूँ, मैं कल्पना में मुझे जो मेरा ही धोखा हो रहा है, और इस धोखे का जो फल है धोखे को सही मानने का यही फल है कि सारों जगत का जन्म मरण किसने है, पर इसको धोखा जानकर इस पद्धति को छोड़ दिया, धोखे को सही मानना छोड़ दिया तो जन्म मरण हो जाएगा। जन्म में रही स्वयं के स्वरूप का विश्वास आना ये सबसे पहली बात, या विश्वास से पहचान होना ये सबसे पहली बात है अनुभव की ताकत पैदा होने के लिए। कोई भी अच्छी है ही नहीं और कोई भी बुरी है, अगर होती तो वो ऐसी लगती और उसको कल्पना नहीं कह सकते। अगर कोई चीज अच्छी होती और कोई चीज बुरी होती तो अच्छी चीज अच्छी लगे और बुरी चीज बुरी लगे, उसमें कल्पना कहना ही गया है, उसको कल्पना नहीं कह सकते। ये तो सही परिस्थिति वास्तविक परिस्थिति होगी, लेकिन ये वास्तविक परिस्थिति नहीं है फिर भी ऐसा लगता है, इसको कल्पना कहते हैं, इसको मिथ्या कहते हैं। इसलिए कोई भी अच्छी बुरी नहीं है, आप कहेंगे कि ये बात कहने की है लेकिन ऐसा लगता नहीं। हम कहते हैं कि तुझे लगता भी नहीं लेकिन तुझे तेरे परिणाम के अवलोकन का अभ्यास नहीं, अवलोकन का अभ्यास नहीं। जैसे कि मिठाई हमको अच्छी लगती है पर खाएगा क्यों, खाने को छोड़ दे। अगर आपको एक गुलाब जामुन खाने में सुख हुआ तो दो खाने में डबल सुख होना चाहिए, और दस खाने में दस गुना, और सौ खाने में दो गुना, और हजार खाने में अरे वामिट हो जाएगा, सुख तो नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। तो ये खाते खाते अच्छी वाली चीज बुरी कहां से हो गई? अब तो आप भोजन के आसन से उठे ही नहीं हो, वहां से ना बने हो, कुछ मिनटों में ये परिस्थिति क्यों बदलती है खाते खाते? कि जो चीज को अच्छी माने कोई चीज के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, भाई साहब आप तो क्षमा करो, मेहरबानी रखो, हम तो खिलाओ कर परेशान हो जाए। जिसके प्रति कुछ मिनटों के पहले तीव्र राग किया हो उसी पदार्थ के प्रति कुछ मिनटों के बाद इतना तीव्र द्वेष क्यों? जांच करनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए कि ये कल्पना है या वास्तविकता है, अच्छी लगी वो कल्पना है या वास्तविकता है, अपने अनुभव को देखते हुए उसको समझा सकते हैं। न्याय रूपी से नहीं, तर्क आलोचना में अपने अनुभव को देखते हुए जब ये बात सही समझ में आई। जगत में भी अनुभव ज्ञान की ही कीमत है, पढ़ाई लिखाई की इतनी कीमत नहीं है, कोई कितना भी डिग्री वाला होगा लेकिन ये पूछेंगे कि आपको पढ़े तो है लेकिन अनुभव कितने काल का है, और ये भी ये बात अनुभव से सिद्ध हो चुकी है इसलिए अनुभव को लोग डिमांड कर रहे हैं। पर कुछ पैसे ही रहते हैं, जैसे डॉक्टर के पैसे हैं, पैसा ऐसा है तो उसमें मरीज की जान का सवाल होता है, मेरी दूर करता है तो मरीज की जान चली जाती है, तो उसको डिग्री प्राप्त होने के बाद दो साल तक पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल नॉलेज तो दिया ही है, फिर थियोरेटिकल नॉलेज पुस्तक के ज्ञान में उसको डिग्री नहीं, उसको मुर्दा दिया है, कई प्रकार के पानी दिए हैं, डिसेक्शन करवाया है, सब खोल करके दिखाया है, सब बात लिया है, फिर भी इस सब बातों में वो उत्तीर्ण होने के बाद भी उसको 2 साल तक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप में रखा जाता है। कि 2 साल तक तो तुम हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टरों के नीचे प्रैक्टिस करो, अलग अलग प्रकार के मरीज को कैसे ठीक किया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है उसका तुम्हारा होगा। फिर बात तो बाद में तुम बाजार में कुर्सी लगा के अपना बोर्ड लगा के प्रैक्टिस करने के लायक है, इसके पहले ये लाइसेंस चालू नहीं होगा डिग्री वाला। ऐसा ही ये जज की पोस्ट में है, ये जो न्यायाधीश बनते उसमें भी ऐसा है कि LLB होने से जज नहीं बन सकते। LLB मैंने लॉ का ये डिग्री है, कानून का ये डिग्री है, इसे जज नहीं बनाया जाता। जज की परीक्षा भले उत्तीर्ण की हो, साथ ही उसको 2-3 साल तक की प्रैक्टिस वकालत की है कि नहीं की है ये देखा जाता है, सनंद की है, क्या क्या उसने प्रैक्टिस की है, इस बात को देख करके फिर तो यहाँ जब कहने का मतलब तो इतना ही है और पॉइंट इतना ही है कि जो जुम्मेवारी का काम होता है संसार में भी, वहां भी बिना अनुभव कोई ऐसे एरे गेरे को काम नहीं देते, काम नहीं सौंपते, अपनी जान नहीं देते, अपने दर्द को ठीक करने को नहीं जाते, क्योंकि ये जुम्मेवारी का काम हो गया। तो क्या अनंत संसार से छूटना और अनंत अनंत काल तक समाधि सुख में रहना ये कोई कम महत्वपूर्ण घटना है क्या? ये तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम इस बात को भी ऐसे लेते हैं कि जहां हमको कुछ महत्व बाकी होता है वहां हम वैसे चलते नहीं, जैसे ये रोटी बनाने के लिए ये मिट्टी का तवा आता है, हमारे यहाँ गुजरात में तावड़ी बोलते हैं, मिट्टी का तवा खरीदने को बाजार में जाते हैं, क्या उसमें 12 आना पिछोटे पैसा देखते हैं इधर उधर उधर, क्योंकि पिछोटे पैसा भी हमको ऐसे फालतू में नहीं देना है, सिर्फ देखते ही नहीं है, शंका करते हैं कि उसकी दरार देखने में नहीं आती है, ऐसी कोई बारिश होगी तो उसकी परीक्षा करते हैं, उसको थूक करके आवाज इसका कैसा आता है। 12 आना देने में भी इतनी परीक्षा, और धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक कार्य करने में लिए कोई जांच नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई तलाश नहीं, क्या कोई धर्म 12 आना से गया बीता है क्या? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इतनी महत्वपूर्ण है, वहां कुछ परीक्षा नहीं, कुछ तलाश नहीं कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम खोटे रास्ते पे हैं, क्या सही रास्ते पे हैं, इसकी तो सबसे अधिक से अधिक जांच और अधिक से अधिक परीक्षा होनी चाहिए, बारीक से बारीक होनी चाहिए। ये तो सिर्फ निर्णय करने का विषय 4 दिन तक क्यों चलता है, 4 घंटा चलता है इसके विषय का, इसे तो सही निर्णय करना, निर्णय को हम पढ़ते पढ़ते कर लेते हैं। अगर हम सोनगढ़ में पूछे तो आप कितने साल से यहाँ तत्वाभ्यास करते हो, करते हो, वहां पर निवृत्ति लेकर के रहे हैं 40 साल का, तो कहेंगे कि 25 साल से, तो कहेंगे 30 साल से, तो कहेंगे 40 साल से। आत्मस्वरूप के लिए अभ्यास करते हैं, शास्त्रों का हम करते हैं, आत्मा का निर्णय किया कि नहीं किया। अरे क्या 40 साल से पढ़ते हैं तो निर्णय नहीं किया, ये बनी कैसा सकता है। अरे अच्छी तरह बता सकते हैं कि आत्मा कैसा है, ऐसा आत्मा है हमारे निर्णय। तो भगवान तो ये कहते हैं कि जिसको सही निर्णय उपयोग दर्शन है प्रयत्न दशा में हुआ उसको अनुभव होने में लंबा काल होता है, उसको 25-30-40 साल का सवाल नहीं है, इतना महीनों महीने का भी सवाल नहीं है। क्या सालों का सवाल नहीं है, इतना महीना भी उसको नहीं करता है, 1 माह 2 माह 3 माह। ऐसी एक ऐसी चीज है कि जब अपनी आत्मा की त्रैकालीन सामर्थ निरपेक्ष सामर्थ जब प्रतिभासित होती है, जब प्रत्यक्ष तौर से प्रयोग से नजर आती है, तब चैतन्य विधि की पूर्णा होती है। क्या कहा, आत्मा में एक पुरुषार्थ की नई नए प्रकार की पुरुषार्थ की एक पर्याय पैदा होती है, उसको चैतन्य विधि की पूर्णा कहते हैं। गुरुदेव के शब्द में ये बात आई है 236 नंबर के बोल में, परमात्म सार में 236 नंबर का बोल है। ज्ञान में जिस जैसे जैसे ज्ञान में समझ के द्वारा आत्मस्वरूप का भाव वासन होता है और स्पष्टतया बढ़ता जाता है, एक बात भाव वासन स्पष्ट होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान का सामर्थ्य बढ़ता जाता है, उसको ज्ञान बल कहते हैं, उसको निर्णय का बल कहते हैं, निश्चय का बल कहते हैं। निश्चय होता है साथ ही निश्चय का बल पैदा हो ही जाता है, उल्टे निश्चय में भी यही परिस्थिति बनी हुई ही है। इसलिए इस परिस्थिति को तोड़ने में, उल्टी परिस्थिति को तोड़ने में थोड़ी और ताकत चाहिए और ये उल्टे निश्चय बल से ही उल्टा निश्चय बल टूटेगा। तो यहाँ यह कहते हैं गुरुदेव कि जैसे जैसे ज्ञान में आत्मस्वरूप का भाव भाषण होता है, त्रैकालिक सामर्थ्य का भाव भाषित होता है, वैसे वैसे ज्ञान का सामर्थ्य बढ़ता जाता है और ये बढ़ते बढ़ते हुए ज्ञान सामर्थ्य द्वारा दर्शन मोक्ष शिथिल हो जाता है। ज्ञान सामर्थ्य बढ़ते ही इसका प्रहार होता है, कहाँ पर होता है, मिथ्या सिद्धांत पर इसका प्रहार होता है। जो मिथ्या सिद्धांत का बल है ये भी एक विचार में आई चुकी है। आत्मा में जो अनंत गुण है, इस गुण में एक श्रद्धा गुण ही ऐसा है कि जो अपनी अनंत शक्ति से हर हमेशा काम करता है, चाहे उल्टा हो चाहे सुल्टा हो। तो जो मिथ्या श्रद्धान है वो तो मिथ्या श्रद्धान से सम्यक श्रद्धान होने में बहुत ताकत चाहिए, क्यों कि ये पूरी ताकत से उल्टा काम कर रही है। श्रद्धा श्रद्धा पूरी ताकत से उल्टा काम कर रही है, इसको सल्टा में सामान्य परिणाम काम नहीं करते। के ऊपर ऊपर से शास्त्र पढ़ लिए और ऊपर ऊपर से दूसरी दूसरी क्रिया कर ली, इससे कोई श्रद्धा पलट जावे, ऐसा नहीं करता। ये तो अनंत सामर्थ्यवंत अपना जो ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, इस आत्मा के आधार से जो ज्ञान बल पैदा हुआ, भाव भाषण से जो ज्ञान बल पैदा हुआ, विचार में प्रतीति के साथ जो ज्ञान बल पैदा हुआ, इससे पहले होश शिथिल होगा। इसका जो इच्छा सिद्धांत का रस है, इसकी ताकत है, वो टूटने लग जाएगी, फिर वो उपशमित होगी। प्रथम मिथ्या तो उपशम होता है, उसको उपशम सम्यक दर्शन कहने में आता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथम सम्यक दर्शन, वो उपसम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन ही होता है, सूक्ष्म और क्षायिक नहीं होता किसी को। तो उपशम मैंने दबाना, उपशम मैंने दबाना, तो उसकी ताकत अगर क्षीण होती है, उसकी पूर्व भूमिका है सम्यक संभव की भूमिका है, तो ये उपशमित होता है, इसके पहले ये उपशमित नहीं होता। तो यहां कहते हैं कि ज्ञान सामर्थ्य द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा ये मोह शिथिल होता जाता है, और जब ज्ञान सम्यक रूप से परिणमता है, मैंने स्वानुभव रूप से परिणमता है, स्वयं के अनुभव में आ जाता है, उसी का मोह का नाश हो जाता है। उपशम हो जाता है, मैंने पहले ही नहीं होता है, इतना लग जाता है, तो उसका नाश हो दिया कि उसी वक्त पैदा नहीं हुआ, ये इसका अभाव है, उपशम को अभाव भी कहते हैं। इसलिए ज्ञान से ही आत्मा की सिद्धि है, ज्ञान सिवा दूसरा कोई किसी भी प्रकार, किसी भी साधन आत्म सिद्धि का साधन नहीं होता, ये सिद्धांत यहाँ रखा है 236 में। इसलिए हमारी जो शक्ति है, हमारा जो पुरुषार्थ है, वो पहले यही सही पद्धति में लगाने और कुछ अन्य पद्धति में लगाने से हमारा कार्य नहीं होगा, ये बात भी समझनी चाहिए। और चालू प्रकरण में ये आते हैं अपन कि ऐसे होते ही एक चैतन्य वीर की स्मरणा होती है, ऐसा जो कहा कि ज्ञान सामर्थ्य बढ़ जाता है, ये बोल लिया है। कि प्रथम अगर लक्ष्य में अपना स्वरूप आया, पहचान में आया, तो अनंत गुण इसमें होने से गुण की रुचि बहुत बढ़ जाती है। गुण की मैंने स्वभाव की, स्वभाव की मैंने गुण की, एक अनन्य रुचि पैदा होती है। अनन्य रुचि का मतलब यह है कि जिससे अलग रह नहीं सके, जिससे दूर नहीं रह सके, उसको अनंत रुचि कहते हैं। संसार में भी क्या है, जिस चीज के प्रति बहुत तीव्र राग होता है, तीव्र प्रेम होता है, तो उससे अलग रहना नहीं चाहता, लेकिन वैसे जिसको गुण की रुचि, उसको भाव भाषण में अपने अनंत गुण भाषित हुए, उसकी रुचि इतनी बढ़ जाती है गुण के विषय में, तो अनन्य रुचि उसको कहते हैं, कि वो अन्य रूप से नहीं रहना चाहते। और सिद्धांत पुरुषार्थ का यही है कि रुचि अनुयायी विद, रुचि को पुरुषार्थ अनुसरण करता है, चाहे उल्टी हो चाहे सुल्टी हो, लेकिन ये सिद्धांत बहुत जनरल सामान्य सिद्धांत है। तो यहाँ जिसको भाव वासन से रुचि जगी, अनन्य रुचि जगी, तो गुरुदेव कहते हैं कि लक्ष्य में आने पर, रुचि होने पर, इसके वीर में, मैंने पुरुषार्थ में स्वभाव सन्मुख की स्फूर्णा पैदा होती है। चैतन्य विनय की स्फूर्णा है। यह बात सम्यक दर्शन पहले की है। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन में तो पुरुषार्थ है ही, अलौकिक पुरुषार्थ है, अपूर्व पुरुषार्थ है ही, लेकिन ये पुरुषार्थ की बात सम्यक दर्शन के पहले की है। और सम्यक दर्शन के लिए यही उपाय है, इससे अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये बात गुरुदेव के शब्द में 210 नंबर के रूप में यहाँ पर आई है। तो कहते हैं कि उस प्रकार जब निर्णय होता है, इसकी जो पूर्व तैयारी है, उस पूर्व तैयारी के विषय में भी गुरुदेव ने बहुत जुस्सेदार भाषा में, जोरदार भाषा में, इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में है, एक बहुत सुंदर बात की है इसी ग्रंथ में। ये बोल रहे 304 नंबर का, जब ये विषय चल रहा है एजेंडा पर, तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, इस पहलू को अच्छी तरह समझना चाहिए। कि सम्यक दर्शन होने के पूर्व तैयारी, इस पूर्व तैयारी का एक महत्वपूर्ण विभाग स्वरूप निश्चय। स्वरूप निश्चय में क्या निश्चित हुआ? कि अपनी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में इस अभेद रूप से दृढ़ स्वभाव, जैसा का जैसा है, वैसा का वैसा लक्ष्यगत होता है। तो अनादि से क्या परिस्थिति है? कि राग रूप विकल्प रूप दशा जो चली आ रही है, उसका अनुभव अभेद रूप से, एकत्व रूप से, अपने रूप से जीव करता है, अनादि से मिथ्या दशा। और निश्चय में, निर्णय में, पहचान में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि निर्विकल्प आत्मस्वरूप का निश्चय हुआ। अलग अलग शब्द से इस स्वरूप को बताने के पीछे बहुत बड़ा मर्म है। निर्विकल्प होना यही आत्मानुभूति है। ये बात को वेदांत में भी कुछ लोगों ने की है। इन लोगों में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, रिसर्च करने वाले हुए, वो बुद्धिमान है, वहां तक बुद्धि पहुंचाई है उन लोगों ने। निर्विकल्प शब्द आता है, अनुभूति शब्द आता है, समाधि शब्द आता है, फिर भी मूल शुद्धात्म स्वरूप निर्विकल स्वरूप होते है। इसका निर्णय का पूर्व भूमिका का जो कार्य पद्धति है, उसका कोई विश्लेषण वहां नहीं मिलता। इसलिए ऐसी बात कुछ विचार में आई है, फिर भी वहां तक वो पहुंच नहीं पाते, इसका यही कारण है। समय सार के तौते गाथा का ये विषय है कि जैसे आकाश निरालंब निरपेक्ष है, ऐसे आकाश की तरह जब मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरे उपयोग लक्षण से ये पहचाना जाता है कि निरालंब निरपेक्ष तत्व हूं मैं, ऐसी चीज हूं, तब निर्विकल्प तत्व प्रतिभाषित होता है, निर्विकल्प तत्व का निश्चय होता है। ऐसा कहा भगवान अमृतचंद्राचार्य देव के शब्द में हम पढ़े इसको, यहां तौतेर गाथा में निश्चय की बात चली है। वस्तु स्वभाव से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं, इसलिए अब मैं समस्त परद्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा इस आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ समस्त परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कलरों के निरोध से इसको ही अनुभव करता हुआ अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो ये क्रोधादि भाव हैं उन सबका क्षय करता हूँ। ये दोनों बात ले ली, आत्मा और आत्मा के अनुभव की विधि। ऐसा आत्मा में निश्चय करके, ऐसा शब्द दिया है, ऐसा आत्मा में निश्चय करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है। अब देखिए प्रैक्टिकल साइड है कि विकल्प को छोड़ा नहीं जा सकता है, कोई ये कहे आज्ञा कर दे, फरमान कर दे कि विकल्प को बंद कर दो, नहीं होगा। विकल्प को बंद करने का विकल्प ही एक विकल्प है, छुटता नहीं। ये विकल्प कोई ऐसी चीज है, बहुत चिकास है, विचार तो सही था ना, एक तो बुद्धि के, इसलिए इसमें बहुत चिकास है, वो छूटते नहीं। तो छूटने के लिए क्या होना, कि निर्विकल्प आत्म तत्व का प्रतिभास होना भाव मात्र होने से ये विकल्प छूटेंगे नहीं, छूटेंगे ऐसा सामान्य भाषा नहीं। आचार्य महाराज ने बहुत ठोस भाषा का प्रयोग किया है कि इस विकल्प का वमन हो जाएगा। जैसे तुमने खीर खाई हो, खाने पर अच्छी लग गई, टेस्ट बढ़ गया, पता नहीं रहा कि हमारे हजम करने की कैपेसिटी कितनी है, मात्रा से अधिक खा ली क्योंकि अच्छी लगी, क्या होगा फिर, ये पॉइजन हो जाएगा। और ये फॉरेन एलिमेंट है, शरीर के साथ इसका मेल नहीं है, जहर शरीर में रहने, कोई करीबन एक फुट नीचे गई है चीज उसको ऊपर ऐसे तो नहीं ला सकते, लेकिन वमन में यहां से फेंकने में आती है, जोर से बात चल जाती है, खाई धीरे धीरे निकालने जरूरत है। फेंकते हैं शरीर उसको बाहर फेंकता है, इतना जोर से बाहर फेंकता है कि आंख में से आंसू गिर जाता है, ऐसा जोर से बाहर फेंकता है। तो यहां ये कहेंगे कि अगर निर्निकल तत्वों का तुझे निश्चय हुआ, तुझे पहचान हुई, तो विकल्प का ऐसे भवन हो जाएगा, फेंका जाएगा। ये छोड़ने के लिए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कैसे निकाले कैसे छोड़े ये छोड़ता नहीं है, साला क्या करे चाहता ही नहीं। लेकिन ये निर्विकल्प निर्णय के बल पे उसका भवन हो जाएगा। इस गाथा में जो प्रवचन करते थे, तब इस भाषा में प्रवचन करते थे कि जिस जीव को, जिस मुमुक्षु को अगर अपना निर्विकल्प आत्म स्वभाव का निश्चय हुआ, उसको सम्यक दर्शन की निर्विकल्प दशा होने का काल पक गया है, ऐसा कहते थे। इसको निर्विकल्प होने का काल पका, इसको अब कुछ लंबा दिन नहीं है, लंबे दिन नहीं है कि ये सम्यक दर्शन से दूर रह जाए। ये निर्णय के विषय में बहुत ठोस बात भगवान अमृतचंद्राचार्य ने की है। ये परमात्मा की संवाद है, गुरुदेव आदि कहीं ज्ञानियों ने ये बात की है, लेकिन मूल चीज आचार्य ने परमात्म में जगह जगह पर, कहीं जगह पर ये चीज रखी हुई है। यहां से अपने अनुभव से मिलान करके उन लोगों ने कही, ज्ञानियों ने कही, सत्पुरुषों ने कही, लेकिन आचार्यों के परमागम के साथ अपने अनुभव का मिलान कर लिया कि हमको भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए ये सत्य ही नहीं कि वहां परम सत्य है। इसको परम विशेषण क्यों लगा कि अपना अनुभव इसका साक्षी, अपने अनुभव में ये साक्षी पड़ता है। क्या इस तरह का मिलान करना चाहिए आगम पढ़ने में, फिर पढ़ाई नहीं करनी, अपने अनुभव में ये साक्षी भूत होता है कि नहीं है, इस तरह के अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसी बात लीजिए मां कि शीघ्र ही वहन कर दिया ऐसे निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता हुआ। यहाँ बात यह है विज्ञान घन की, मूल स्वरूप तो विज्ञान घन है ही, साथ में ये अनुभव में विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रमों से निवृत्त हो जाता है, आश्रमों से छुट जाता है, जो गंध का कारण है आश्रम से छुट जाता है, तो उसको गंध से भी छुट जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। ये बात आचार्य भगवान ने इसी 200 नंबर के गाथा में कही। अब गुरुदेव अपनी भाषा में कहते हैं, ये भी बहुत ठोस बात आई है 304 नंबर के बोल में, कहते हैं कि ये चीज जो कही, ये विषय जो चला, जो सब्जेक्ट चला, उसको प्रयोग में लाने के लिए क्या शब्द पढ़ा है इधर 304 में, कि इस वस्तु को प्रयोग में लाने के लिए अंदर में मूल में है, अंदर में से मूल में से पुरुषार्थ का उपाड़ आना चाहिए। ये पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाली चीज है, पुरुषार्थ साध्य है, यानी पुरुषार्थ से जिसकी सिद्धि है ऐसी चीज है। आत्मानुभव यानी भव भ्रमण का नाश इस पुरुषार्थ पर आधारित है। पुरुषार्थ निर्णय से उत्पन्न होता है, निर्णय है वो प्रयोग से होता है। ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर के विचार से, तर्क से, पढ़ाई से निर्णय नहीं होता। मूल में से पुरुषार्थ का उपाय आना चाहिए कि मैं ऐसा महान पदार्थ, निर्विकल्प तत्व, ऐसा महान पदार्थ, विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, मैं ऐसा अंदर में से पुरुषार्थ से अपने ओर का उठाना चाहिए, उठावाना चाहिए, भाव में परिणाम में सभी ये कार्य संपन्न होगा। इसके पहले बहुभ्रमण छूटने का कोई अवसर आने वाला नहीं है। ऐसे ऐसा महान पदार्थ हूं, ऐसा निरावलंबन रूप से किसी के भी आधार बिना, निरावलंबन रूप से किसी के भी आधार बिना, किसी निमित्त के आधार बिना और अपने किसी विकल्प के आधार बिना, विचार के आधार बिना, पूर्व पर्याय के आधार बिना, वर्तमान में ही कार्य होता है। ऐसा निरावलंबन रूप से दून चलेगी, इस दून में आएगा, दूने होना पड़ता है इसके पीछे, इस दून चलने चाहिए कि मैं ऐसा कोई महान पदार्थ जिसको दून है, जिस कार्य के दून है वो किसी की सुनता नहीं, जो अपनी दून में आया है वही करता है, किसी की नहीं सुनता। ऐसे दूने लोगों से ये कहा जाता है, कहते हैं कि जगत के और उदय के कार्य करने में तो तुझे कभी कभी धन आती हूं, लेकिन तेरे स्वरूप का निश्चय करके, पहचान करके जब इसकी धुन चढ़ेगी तो यह अनुभव होगा ही होगा। और कि अनुभव के पहले ऐसी धुन होती ही है, ऐसा ऐसी धुन हो गए उसको ही अनुभव होता है, दूसरे को अनुभव होता है। कहने का यहाँ अभिप्राय ऐसी धुन चलते चलते इस धुन में ऐसा रस, तीव्र रस आत्मा के स्वभाव के लक्षण से, पहचान से ऐसा तीव्र रस आए कि इस रस को छोड़ करके किसी दूसरे परिणाम में आना चाहिए ही नहीं, दूसरे कार्य आ पड़े तो एक बोझा लगे सिर में, जिस दूसरे दूसरे कार्य को उत्साह से जो लोग उठाते हैं ये तो परिस्थिति ही जिसकी सुनती है। यहाँ तो उदय के कोई कार्य आ पड़े पूर्व कर्म के उदय से तो ये भी उसको हो जाए, क्योंकि वहां तो जाना पड़ता है, हमें तो जाने का कोई रस नहीं है, खाना पड़ता है खाने में रस नहीं आता, बोलना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है घर वालों से, परिवार वालों से, लेकिन हमें तो बुरा लगता है, रस नहीं आता। ये हालत जब आत्मा की पहचान से इस विषय की धूम चढ़ती है तब हो जाती है, ऐसा गुरुदेव ने यहां फरमाया है। अपने अनुभव से सब बात की मिलान कर देना कि इस परिस्थिति में हम अगर नहीं आए हैं तो आए बिना निवेदन नहीं, चाहे आ जाए चाहे कल आए चाहे अनंत काल के पीछे, लेकिन आना ही होगा, ऐसा ही होना होगा, ये बात मिला सके। बाहर में आना ही जैसे नहीं, यहाँ पर अभी विकल्प है, अभी विकल्प को अभी हिंदी चलता है, फिर भी ऐसा ही लगे कि मैं ये हूँ, ऐसा गोलन का जोर चलते चलते निर्विकल्प तत्व का ऐसा जोर से गोलन चले, ऐसा जोर से गोलन चले कि वैसा ही निर्विकल्प होके अंदर में उतर जाए, ऐसे निर्विकल्प संज्ञक दर्शन होने की पहले की दशा है जिसका गुरुदेव।